وقال نسوت فی المدینتی، اور کہا اور کہنے لگی عورتیں اس شہر کی، اس شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں، کیا امراۃ العزیزی کہ عزیز کی بیوی، تراودہ فتاحہ کہ وہ خواہش کرتی ہے، وہ پھسلاتی ہے فتاحہ اپنے غلام سے، وہ خواہش کرتی ہے اپنے غلام کی، ان نفس اس کے جی کو، گویا کہ اب یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں یہ بات کہ وہ واقعہ جو عزیز مصر کے گھر میں دروازے بند کر کے کیا گیا تھا، کہ جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑنا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ گھر کی چار دیواری سے وہ واقعہ جو تھا وہ بستی کے اندر جو ہے وہ پھیل گیا، اور جو درباری لوگ تھے ان کو بھی پتا چلا، ان کی عورتوں کو بھی پتا چل گیا، اور ان عورتوں نے جو ہے وہ کیا کیا، لان تان کرنی شروع کی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانچ عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں، تو اب وہ برا بھلا جو ہے وہ کیوں کہنے لگی، اس لیے کہ ان کو جب یہ بات پتا چلی کہ عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اور اتنا بڑا عہدہ، اور اس کی بیوی کا حال دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک غلام کے پیچھے جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور دوسری یہاں بات جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ بھی جو ہے وہ اس پر بھی وہ لان تان کر رہی تھی کہ یہ عورت جو ہے جب اس کا مقام اتنا اونچا ہے تو یہ آخر اس غلام کو جو ہے وہ فریفتہ کیوں نہیں کر سکی، آخر ایسی بھی کیا بات ہے، تو گویا کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس درجہ گھٹیا عورت ہے کہ اپنے ہی غلام پر عاشق ہو گئی، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اتنی بدھو ہے کہ اگر وہ یوسف پر فریفتہ بھی ہو گئی تو اسے اپنی طرف پھر مائل کیوں نہ کر سکی، اور ایک نوجوان کو اپنی طرف مائل کر لینا، ایک جوان امیر اعلیٰ عہدے دار گھر میں، اعلیٰ عہدے دار کے گھر میں رہنے والی عورت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو شہر کے اندر عورتوں میں یہ بات جو تھی وہ گھومنے لگی، اور یہاں پہ قرآن میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ عورتیں یہ بات کرنے لگی، اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی کے گھر، خاندان، شہر، بستی میں کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ اس پر مسلسل بولتے ہیں، مسلسل باتیں کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات صحیح بات کا، سچ بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے نا، اور زبانیں جو ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں بولتے بولتے نا، تو کبھی ایک کو ملامت، کبھی دوسرے کو ملامت، تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن یہی بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اعلیٰ عہدے دار کی بیوی ہو کر جو ہے وہ ایک غلام پر جو ہے وہ عشق کی ڈورے ڈالے اور پھر ذلیل و خوار ہو، تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے، اور پھر یہ کہ نامراد بھی ہو کہ اس کو کچھ کامیابی بھی نہ ملے، تو اور زیادہ ایسے میں غصہ جو ہے وہ انتقام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہا کہ قد شغفہا حبا، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، اور قد شغفہا حبا، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے، محبت بھی اور شغف بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ محبت کے لیے قرآن میں پانچ لفظ آئے ہیں، محبت، محبت کرنا، ایک تو حب ہے، اور یہاں پہ حبا بھی ہے، تو حبا، محبا، کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، اس کو چاہنا، اور یہ عورت، اولاد، دولت، سونا، دانا، گندم، کیونکہ حب گندم کے دانے کو کہتے ہیں نا، تو اب مراد کیا ہے کہ وہ چیز جس سے انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، جس کو انسان پسند کرتا ہے، تو حبت القلب، اسی طرح جو ہے یہ یعنی دل کی محبت، دل کا چاہنا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا لفظ ہے حبا، محبا کے علاوہ ود، और वध से आप वो भी याद रखें कि चाहना वदूद है ना, दोस्ती करना, मोहब्बत करना, ये लफ्ज कभी सिर्फ चाहने और तमन्ना करने के मानी में भी आता है। और जब ये मोहब्बत के मानों में इस्तेमाल हो ना वध, तो इंतहाई मोहब्बत मुराद होती है। और फिर आप देखें जैसे इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। फिर तीसरा लफ्ज है अल्लाफा, मुअल्लिफ, उल्फत, किसी चीज के जो मुंतशिर अज्जा है ना उनको बाहम जोड़ देना। लो अनफक्ता मा फिल अर्दी जमी अम्मा अल्लफ्ता बैना कुलूबहिम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया भर की दौलत तुम खर्च करते तब भी इन मुसलमानों के दिल में मोहब्बत पैदा न कर सकते। तो ये तीन दर्जे के बाद चौथा दर्जा है शगाफा का, जो भी आप पढ़ रही हैं। तो शगाफतुल कल्ब, ये कहते हैं दिल का अंदरूनी हिस्सा, दिल के पर्दों के अंदर, दिल का गुलाफ। शगाफा क्या मतलब है? इसके दिल के पर्दे पर चोट लगाई। शगाफा किस मानी में है कि दिल के पर्दे पर चोट लगाई। शगाफा हुब्बा, ऐसी मोहब्बत जो दिल के अंदरूनी हिस्से तक जो है सराइत कर चुकी हो। अब देखें कि ये भी एक मुबालगा ही है ना, ये भी एक ताकीद ही है। शगाफा ही मोहब्बत का चौथा दर्जा है वैसे ही, अब साथ में हुब्बा भी आ गया। ऐसी मोहब्बत जो दिल के अंदर अंदरूनी हिस्से तक जो है वो जज्ब हो जाए, सराइत कर जाए। तो मोहब्बत में दीवाना होना, और इसको यूं भी कह सकते हैं कि इसको आशिकी वाली मोहब्बत, आशिक जैसे दीवाना हो जाता है ना। लैला मजनू की किस्सा कहानी भी आपने सुनी होगी कि हुसन की बात नहीं है, वो काली थी, वो कलोटी थी, वो जैसी भी थी, लेकिन मजनू, तो मजनू वो इतना मारूफ हुआ कि हर किसी के लिए वो मजनू जो है वो बोला जाता है। और पांचवा लफ्ज है उरुबा, फजअलनाहुन्ना अबकारन उरुबा, तो उरूब की जमा है, और अरूब कहते हैं अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली औरत को, बहुत हंसने हंसनाने हंसाने वाली खुश जौक औरत को, लोग नाम भी रखते हैं उरूब। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हमने हूरों को कंवारियां बनाया, शोहर से प्यार करने वालियां और हम उमर। तो उरूब के क्या मतलब है? मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, खास तौर पे किससे? अपने शोहर से। तो पांच दर्जे हैं मोहब्बत के, ये जो है वो मुतरादिफात में सिमिलर वर्ड में इस्तेमाल होते हैं कि मोहब्बत के लिए कुरान में हुब, नंबर दो वद, नंबर तीन अल्लाफा, नंबर चार शगफा, और नंबर पांच उरूब का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब आप देखिए कि शहर की औरतें जो मलामत कर रही थी, और साथ ही क्या कह रही थी कि कद शगफा हुब्बा, मोहब्बत ने इसको जो है वो बेकाबू कर रखा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी हालत जो है वो दीवानों वाली हो गई है, बहुत ही ज्यादा, जैसे उसको किसी को फिर मोहब्बत इतना दीवाना कर दे कि उसको होश ही ना रहे। कहा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है, हम देखते हैं उसको सरी खता पर। दलाल जिसको जो है वो समझ ना आए, सही काम ना करे, गलत काम करे, मुबीन खुली कि खुली गलती पर है। उनको ये बात बड़ी ही अचंभे की और अनोखी लग रही थी। फलम्मा समयत वे मकर हिन्ना, फिर जब उसने सुना इनकी मक्काराना बातों को, किसने सुना? अजीज मिस्र की बीवी ने जब सुना इन औरतों की, जो शहर में मुख्तलिफ ओहदेदारों की बीवियां थी, या शहर में मुख्तलिफ बातें, सोचे में गोइयां लान तान जब उसकी कानों तक भी पहुंची, तो क्या किया उसने? वे मकर हिन्ना का लफ्ज कुरान ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्या मतलब है कि ये औरतें जो बुरा भला कह रही थी, हर तरह से उसको बुरा भला कह रही थी, मजाक उड़ा रही थी, तो उसके दिल पर बड़ी चोट लगी। और इसने सोचा कि जरा यूसुफ पर अपने आप को ये भी तो आजमा के देखे ना, इन्हें भी तो यूसुफ की कदरों कीमत का अंदाजा हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उसने क्या किया? अरसलत इलैहिन्ना, भेजा इनकी तरफ, बुलावा भेजा इनकी तरफ, गोया कि उसने जो है वो एक दावतनामा जो है वो इनकी तरफ भेजा। व आतदत लहुन्ना मुत्तकउ व आतत कुल्ल वाहिदिम मिनहुन्ना वाहिदतिम मिनहुन्ना सिक्कीना, और उसने तैयार की उनके लिए एक तकिया दार महफिल, मुत्ता कान का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है। और आप ये बात भी याद रखें कि मुत्ता कान जो है किसे कहते हैं, तकिया लगाना। और फर्शी मजलिसें ये मारूफ हैं अरबों में भी और कश्मीरियों में भी बड़ी मारूफ हैं। और फर्श पर दो तकिए और कालीन और बिछा कर जो है वो बैठना, इसका एहतमाम उस जमाने में भी था और आज के जमाने में भी जो है वो पाया जाता है। तो अब जो है उसने क्या किया कि उसने चाहा कि मैं इन औरतों को बताती हूं कि मैं जिस आदमी पर फरेबता हुई हूं या जिस पर मैं डोरे डालने लगी हूं, ये कोई आम सा आदमी नहीं है जिसको ये गुलाम समझ रही है और मुझ पर बातें कर रही है। अच्छा, मैं इनको दिखाती हूँ, मैं भी इनको जरा मजा चखाती हूँ। और ये तो ऐसा शख्स है जो जाहिर और बातिन में जो है वो खूबसूरत है, और उसे देखकर इंसान नकद दिल और जान सब कुछ जो है वो हार बैठता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है अगर किसी की ऐसी कैफियत जो है वो हो जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी दावत का एहतमाम करूं जिसमें इन औरतों को भी मैं दावत दूं कि तुम सब भी जरा चली आओ ना। वह आतत, और फिर उसने क्या किया कि वो इन सब के सामने जो है उसने हर एक के हाथ में जो है वो एक छुरी दे दी। वह आतत और दी कुल्ला वाहिदतिम मिनहुन्ना, इनमें से हर औरत को एक छुरी दी। सिकीना, सिकीनन किसे कहते हैं, छुरी को। वकालत, और कहने लगी उखरुज, निकला अलैहिन्ना, इन पर। अब जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो औरतें बैठी हुई थी, दावत हो रही थी, और मुफस्सरीन जो इसकी तफसीर बयान करते हैं वो क्या कहते हैं कि उसने क्या किया कि महफिल में जो है वो फल रखे और काटने के लिए छुरियां भी औरतों के हाथ में दी और फिर कहा कि खाओ पियो मजे करो, जैसे दावत थी ना। और जब औरतें आ गईं और खाने पीने में मसरूफ हो गईं, अब उसने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो बुला लिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको तो नहीं पता था, जरा गुलाम थे, घर के अंदर थे। जब उनको कहा कि तुम आओ तो वो जो है वो आए। जब वो आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्नो जमाल देखकर और उनका जो है वो जो तकद्दुस और पाकीजगी जो उनके चेहरे में थी, उनके सरापे में थी, उसको देखकर जो है वो तमाम जो औरतें थी वो बिल्कुल बेखुद हो गई। इस कदर महवे नजारा हो गई कि उनकी छुरियां जो थी फलों पर चलने की बजाय जो है इनके हाथों पर चल गई। आप देखें कि बाज औकात आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको पता होता है कि बहुत मोहतात एहतियात से गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते अचानक कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी अनहोनी सी बात हो जाती है, तो बाज़ औक़ात आप भूल जाते हैं कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, आप ऐसे देख रहे होते हैं, है ना, टिकटिकी बांध कर। या कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, लेकिन आप फोन पर हैं, अचानक कोई ऐसी आपने बात सुनी कि आप सुनी या देखी, क्या आप भूल जाते हैं कि मैं इतना जरूरी काम कर रही थी कि खाना जल जाएगा तो जो है वो अचानक जल जाए। यानी इंसान होश में नहीं रहता, बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज देख लेता है या इतनी खूबसूरत या इतनी डरावनी या इतनी जो है वो गमनाक कि वो अपने आप में नहीं रहता ना। तो अब जो है यही हालत जो है वो जो औरतें थी उनकी हुई कि जब उन्होंने, वो तो गई थी वहां पे दावत के लिए, ऊपर से अजीज मिसर की बीवी ने गुलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बुलाया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने पाकीजगी और तकद्दुस का एक पैकर खड़ा है, एक सरापा खड़ा है। और फिर कैसा कि निगाह भी उठा कर ना देखे, हुस्नो सूरत और सीरत का मुजस्मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया बयान करने के दौरान फरमाया कि जब तीसरे आसमान का दरवाजा खोला गया तो वहां सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ने हुसन का आधा हिस्सा उन्हें अता किया था, आधा दुनिया में और आधा जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप सोचे तो सही। और आज की इस दुनिया में कभी कश्मीरियों को बंदा देखता है और कभी कोई भी शक्ल जो सूरत इंसान देखता है वो इतनी दिल को भली लगती है, इतनी अच्छी लगती है। अभी पिछले साल की बात है, हम छुट्टी गए हुए थे लाहौर में जो है वो हम दोस्तों के पास गए और मेरे साथ कुछ और भी मेहमान थे, हम जिनके घर गए मेजबान के, तो मेजबान बहुत खूबसूरत थे। तो बाद में भी घर भी बड़ा था, दावत भी बड़ी जबरदस्त थी, सारी बातें, लेकिन मैं नोट कर रही थी कि जो मेरे साथ गई थी वो बार बार कहती थी कि वो कितनी खूबसूरत है, हालांकि वो खुद भी खूबसूरत थी, लेकिन वो एक ही बात कहती थी बार बार कि वो कितनी खूबसूरत थी। तो मैं यही बात सोच रही थी कि इंसान जो है वाकई जो जाहिरी तौर पर देखता है तो नकद दिल हार बैठता है, उसको कोई चीज जब अच्छी लग जाती है तो बहुत ही वो उससे मुतासिर होता है ना। और आप इस बात पे जरा तसव्वुर तो करें कि पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के पास जितना भी हुसन है, आधा दुनिया के पास है और आधा यूसुफ अलैहि सलाम के पास, कितने वो खूबसूरत होंगे। तो यहां पर भी क्या बात है कि उन औरतों के हाथ में जब छुरी दी गई और फिर यूसुफ अलैहि सलाम को जब वो फल काट काट कर खा रही थी तो अजीज मिस्र की बीवी ने इशारा किया कि इनके सामने निकला, फलम्मा रई नहु अकबर नहु। और जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या बात पता चलती है कि जब इन औरतों ने यूसुफ अलैहि सलाम को देखा तो वो बिल्कुल ही शशदर रह गई, वो बिल्कुल ही जो है अपने आप में ना रही, और गोया के इतनी ज्यादा वो हैरान हुई, इतनी वो जो है वो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के हुसन को जब उन्होंने देखा तो क्या कहा, अकबर ना हो, उसको हुसन में उनको फायक तर समझा, बहुत बड़ा समझा, बड़ी अजीम चीज उन्होंने जो है वो यूसुफ अलैहि सलाम को समझा। वकत्ता ना ऐ दिया हुन्ना, अब उनके दिल की जो कैफियत थी ना, अब हाथों से उनका इजहार हुआ कि वो भूल ही गई कि वो फल काट रही थी, उन्होंने फल की बजाय अपने हाथों को ही काट लिया। इतना यूसुफ अलैहि सलाम के हुसन में वो महव हो गई, क्या किया, वकत्ता आना ए दिया हुन्ना, कि उन्होंने जो है वो अपने हाथ जो है वो काट बैठी, वकुलना और वो कहने लगी और वो पुकार उठी, हाशा लिल्लाह मा हाजा बशारा, हाशा लिल्लाह ये शख्स इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अब आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तरफ हुसन, दूसरा उनकी सीरत, और औरतों का उनको देखना और उनका उनको निगाह उठाकर भी ना देखना, और बाज जो नेक चेहरे होते हैं, जो अच्छे चेहरे होते हैं, उनमें वाकई शराफत टपक भी रही होती है ना। तो अब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनका हुसन, उनकी सीरत देखकर जो है वो औरतें जो थी बिल्कुल ही मदहोश सी हो गई, उनको जो है वो बिल्कुल ही होश ना रहा, हाथ काटने के साथ साथ बेख्तियार जैसे किसी के मुंह से जो है कोई जुमला निकले, और क्या निकला कि हाशा लिल्लाह ये इंसान तो हरगिज नहीं है, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग जो है वो फरिश्ता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो ये समझ रही थी कि ये जो है तो इंसान, लेकिन दरअसल ये फरिश्ता है, यानी फरिश्ता इंसानी शक्लो सूरत में आया है, उनका ये मतलब नहीं था। बल्कि असल बात क्या है कि आम लोग जो हैं वो उनको कैसे पता चलेगा कि ये फरिश्ता है ये इंसान नहीं है, बल्कि जब किसी के जो है वो सीरत की, इखलाक की, किरदार की तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि वाकई वो तो फरिश्तों की तरह मासूम है। तो यहाँ पे भी उनका जो है वो यही मतलब था कि जिस तरह फरिश्ते जो हैं वो बुराइयों से, गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, तो इसी तरह जो है उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो ख्याल किया। आप देखिए मलकुन करीम का लफ्ज जो है कुरान ने इस्तेमाल किया है कि फरिश्ता ही नहीं बल्कि ऐसा फरिश्ता जो बुजुर्ग हो, ऐसा फरिश्ता जो कि बहुत ही बेहतरीन हो, करम वाला हो, इज्जत वाला हो। फिर फरमाया कालत फजालिकुन लजी लुमतुन्ननी फी, अब औरतों की जब ये हालत देखी अजीज मिस्र की बीवी ने तो उसने समझा कि ये है मुनासिब वक्त कि अब तीर फेंका जाए, ये है मुनासिब वक्त कि अब इनको जताया जाए कि तुम ही थी जो मुझ पर लान तान कर रही थी, तुम ही थी जो मुझे बुद्धू कह रही थी, तुम ही थी जो मुझे कह रही थी कि गुलाम पर जो है वो दिल दे बैठी हूं। कालत बोल उठी फजालिकुन लजी, बस यही है वो शख्स। तो क्या कहने लगी, ये वही तो है अल्लाह जी जिसके बारे में लुम तुन्ना नहीं थी, तुमने मुझे ताना दिया था इसके बारे में, जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी, भला कद रावदत हूँ अन नफसे ही, बेशक मैंने ही इसको जो है रिझाने की कोशिश की थी, मैंने ही इसको फुसलाने की कोशिश की थी, मैंने ही इसको जो है वरगलाने की जो है वो कोशिश की थी। तो अब जो है वो क्या करती है कि अलल ऐलान जो है, आप देखें अलल एलान इस बात का जो है वो इकरार करती है, इस बात को तस्लीम करती है कि मैंने लेना चाहा था इससे इसका जी। क्या मतलब है इसका? मैंने लेना चाहा था इससे अन्नफ्स ही इसका दिल, इसका जी, इसका नफ्स। फस्ता असम, बस ये बच निकला, मगर ये जो है वो बच निकला और ये मेरी बातों में, मेरी चाल में नहीं आया। इसने अपने आप को थाम रखा, इज्जत की, असमत की जो है वो हिफाजत करना। आप इस बात का अंदाजा करें यहां पर कि जुलेखा जो है वो क्या करती है, धमकी देती है। और आप सोचें कि पहले उसको बहुत ही दिल में दुख था, अफसोस था कि दूसरे अफसरों की बीवियां, शहर की औरतें मेरे ऊपर अब बातें करती हैं, और अब जो है सर उठाकर कहती है कि बताओ भला कि अब तुमने तो अपने हाथ जो काट लिए, बताओ इस मामले में मैं कितनी कसूरवार हूं। अब मैं बरबला कहती हूं कि मैंने इसके सामने अपना नक दिल जो था वो दिया था और मैंने इसको मायल करने की पूरी तरह जो है वो कोशिश की थी, और मैं अपना, मेरा दिल जो इसकी तरफ मायल है मैं उस पर मजबूर हूं। तो गोया के वो ये बात जो है वो उनसे कहती है कि वला कद रवत तो हु नफ से ही फसका असम वला इल्लम यफल मा आमरो हु, और अगर इसने ना किया वो जिसका मैंने इसे हुक्म दिया, अगर ये मेरा कहना ना मानेगा जो मैं इसे चाहती हूं, क्योंकि ये गुलाम है और ज़ाहिर इक्तदार भी उसका था, घर भी उसका था, और अब ये था कि अपनी पूरी दोस्तों को, सहेलियों को, शहर की औरतों को भी उसने अपने साथ जो है वो शामिल कर लिया। तो अब वो कहती है कि अगर इसने मेरा कहना ना माना जो मैं इसे कहती हूँ, लयूस जनन्ना वला यकूनम मिन सागरीन, तो ये जरूर व जरूर जो है वो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो खार जो है वो होगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि मिस्र के ऊंचे तबके की उस वक्त इखलाकी हालत क्या थी कि अब आप देखें कि अजीज की बीवी ने जिन औरतों को बुलाया है तो वो कौन औरतें हैं? ऊंचे तबके की आला ओहदेदार जो मर्द हैं उनकी बेगमात हैं। अब आप देखें कि एक तरफ वो अजीज मिस्र की बीवी जो है उन औरतों के सामने अपने महबूब नौजवान को पेश करती है कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, उसको पेश करती है, फिर बताती है कि इसकी ये है खूबसूरत जवानी, ये इतना खूबसूरत है, और उन औरतों को कायल करती है, उन औरतों को कायल करती है कि ऐसे नौजवान पर अगर मैं मर ना मिटती और उसको जो है वो आखिर उसको अपनी तरफ जो है वो ना वरगलाती, फुसलाती ना, तो फिर आखिर और क्या करती। तो गोया के जो गलत काम वो कर रही थी अब उस पर जो क्या क्या है, हुज्जत देती है, एक बात करती है और अलल एलान जो है वो करती है, वो तस्दीक करती है कि मेरी जगह अगर आप भी होती तो ऐसे ही करती है ना। तो अब आप देख लीजिए कि जरा सी भी जो है वो शर्म या हया नहीं है कि अलल एलान लोगों के सामने इस बात का इजहार कि मैंने ही ऐसा किया था और मैं क्यों ना करूं। और अब जो है वो खूबसूरत गुलाम जो है गोया कि उसकी ख्वाहिश नफ्स का अगर खिलौना बनने को तैयार नहीं होता, राजी नहीं होता और उसकी बात मानता नहीं, तो फिर धमकी उसकी क्या है कि अगर इसने मेरा हुक्म को ना माना तो मैं इसको जरूर ब जरूर जेल भिजवा दूंगी और वो बहुत जलीलो खार होगा, सागरीन। और ये जो है ना सिर्फ ये कि ये जेल की हवा खाएगा, जेल की कैद में पड़ा रहेगा, बल्कि होगा बेइज्जत, इसकी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी, छोटा होकर इसको जो है वो रहना पड़ेगा, जैसे कोई शख्स हो तो इज्जतदार लेकिन खुद ब खुद अपनी जिल्लत जो है उसको गवारा कर ले। काला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा रब सिजन अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैह। आप सोचे तो सही, आप देखे तो सही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कि इस मौके पर क्या जवाब देते हैं ना, जवानी है, हुसन है, बुराई की खुल्लम खुल्ला दावत है। पहले एक औरत थी जो अपने अंदर वरगला रही थी और रिझा रही थी और फुसला रही थी, अब पूरे शहर की औरतें भी जाल फेंकने लगी हैं। अब हर तरफ से आजमाइश है ना, हर तरफ से तीर फेंका जा रहा है, हर तरफ से जो है वो दाना डाला जा रहा है, और ऐसे में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी इज्जत, अपने ईमान, अपनी हया की हिफाजत करते हैं और कहते हैं कि मेरे रब, असिजनु जेल खाना कैद अहबू मुझे ज्यादा महबूब है, मुझे मंजूर है, मुझे पसंद है। इलैया मिम्मा यदउननी इलै, बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ये दुआ अपने दिल में करते हैं, ये दुआ जो है ना एक मोमिन का हथियार है। और मुझे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बहुत ही प्यारी लगती है, जो हदीसे कुदसी है कि सात किस्म के लोगों को जो अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी, उन सात आदमियों में से एक आदमी जो है एक वो शख्स है जिसे एक ऐसी औरत दावते गुना दे जो हुस्नो जमाल से भी आरास्ता हो और जाहो मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो इसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूं। तो आप देख लीजिए कि सही बुखारी की हदीस के इस हिस्से से हमें क्या बात पता चलती है, कोई औरत खूबसूरत हो, दौलतमंद भी हो और वो बुराई की दावत दे, और जो नौजवान है वो इस वजह से बुराई की दावत को ठुकरा दे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर लगता है ना, तो उसको रहमान के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी जिस दिन बड़ा ही जो है वो नफसा नफसी का आलम होगा और कोई वहां पे जो है वो और साया नहीं होगा ना। तो डर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी हया की हिफाजत करना और नेकियों का जो है वो मुजस्मा बनना, ये पैगंबरों का जो है ना वो किरदार है। और आप देखें तो सही, आप सोचें तो सही, अब एक जाल नहीं अब हजारों जाल हैं, अब एक औरत नहीं अब कई औरतें हैं, और फिर साथ ही ये धमकी भी। अब आप सोचें कि औरतों के सामने उसका ये ऐलान करना कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो ये जेल खाने में जरूर बजरूर भेजा जाएगा, और या फिर ये है कि ये जलील और खार होकर रहेगा। और जाहिर है हुकूमत इकतदार ओहदा, तो जब हुकूमत इकतदार और ओहदा होता है तो जो आम लोग होते हैं वो उनके लिए अपने आप को बचाना, इज्जत ईमान को बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में उनका ये दुआ करना, इससे ये बात पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ही ईमान, अज्म, इस्तकलाल और इस्तकामत से नवाजा था कि किसी औरत का जादू इन पर ना चल सका। और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे साबित कदम रख, इन औरतों की मकारियों से तो मुझे महफूज रख, ये जो तूफान है ना जो मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं बुराइयों के तूफान, मुझ में तनहा इनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, मैं इस गंदे माहौल से ये बात बेहतर समझता हूं कि मुझे जेल खाने में ही जो है वो भेज दिया जाए। क्योंकि अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो खुलम खुला बुराई की दावत को कबूल कर ले, पहले वो छुप कर दरवाजे बंद करके बुराई करना चाहती थी, अब वो अलल ऐलान इस बात पर आ गई कि या तो इसको मेरी बात माननी पड़ेगी या फिर इसको जेल में जाना पड़ेगा या जलीलो खार होगा। और अब वो कहते हैं कि ठीक है, ये मुश्किलात जो हैं, ये मुसीबतें और ये आजमाइश जो है, मैं इसको कबूल करने को तैयार हूं। और मिम्मा यदउननी इलै, उस चीज की निस्बत जो ये मुझे जो है वो बुराई की दावत देते हैं, वह इल्ला तसरिफ अन्नी कैदा हुन्ना, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया, ए अल्लाह अगर तूने इनकी चालों को मुझसे हटा ना दिया, ये जो बुराई की दावत है, इनकी बातें हैं। अब आप सोचे तो सही, एक नहीं अब वार पे वार चला आ रहा है, पहले वो वैसे ही बहलाना भुसलाना, फिर दरवाजों का बंद करना, फिर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का भागना, फिर अपने शौहर को ये कहना कि नहीं ये जो है इसने बुराई का इरादा किया था, फिर अलल ऐलान पूरे मिस्र में उस बात का चर्चा होना, और फिर अलल ऐलान जब उसका ये धमकी देना, तो अब जैसे इंसान जो है वो सोचता है कि अब जाऊं तो जाऊं कहां, और कहां मैं पनाह जो है वो लूं। तो उस वक्त जो है वो कहते हैं कि अल्लाह तू इस मुसीबत को, इस आजमाइश को, इन औरतों की चालों को मुझसे जो है वो हटा दे, वह इल्ला तशरीफ अन्नी कई दहुन्ना, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे ना हटाया, असबू इलई हिन्ना, तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा, मैं इनके जो जाल है उसमें जो है वो चला जाऊंगा। और आप जो है वो ये बात याद रखें कि आपको पता ही है ना कि सौब जो है वो तीर का निशाने पे लग रहा, कि ए अल्लाह ताला अब जो है तेरी मदद चाहिए, मेरा काम है कोशिश करना, दुआ करना, और अब तेरी मुझे मदद चाहिए ताकि मैं अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करूं, वरना जो है ना अब इस बुराई से बचना मेरे लिए जो है वो मुश्किल है, और अगर तूने मुझे इस बुराई को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके फरेब में ऐसा ना हो कि कहीं मुब्तिला हो जाऊं। वाकुम मिनल जाहिलीन, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा शुमार जो है वो जाहिलों में से होगा। तो आप जरा अंदाजा करें, आप जरा अपने तसव्वुर में वो नक्शा लाएं, 19-20 साल का नौजवान है और खूबसूरत है, बेहतरीन तंदुरुस्ती कुदरत ने, किस्मत ने उनको अता की है, और दुनिया की सबसे जो तहजीब और तमद्दुन वाली सल्तनत है उसके पाया तख्त के एक बड़े रईस के घर में कुदरत उसको ले आई है। जाहो मनसब, दौलत, इज्जत सारा कुछ वहां पे है। पहले सिर्फ उसकी बीवी पीछे पड़ती है, अब जो है वो हर इर्द गिर्द में जब आपके हुसन का चर्चा होता है तो और बहुत सी अमीर घरों की औरतें जो है वो इनके ऊपर दीवाना हो जाती हैं, और हर तरह की तदबीरें जज्बात को भड़काने के लिए और खूबसूरत जाल हर वक्त और हर जगह उनको फांसने के लिए जो है ना वो मौजूद है। गोया के गुनाह पूरी खुशनुमाइयों के साथ, पूरी दिल फरेबियों के साथ दरवाजा खोल कर उनका इंतजार कर रहा है। और अब आप देखिए कि ताक में लगा हुआ है गुनाह के, किसी तरह अगर जरा सा भी इनके अंदर बुराई का जो है वो अदना सा भी मिलान या रुझान हो ना तो इनको अपनी तरफ जो है वो खींच लिया जाए। अगर लम्हा भर के लिए भी इनके इरादे की बंदिश ढीली पड़ जाए तो क्या है कि वो गुनाह के दरवाजे के अंदर, एक नहीं कई दरवाजों के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात लगती है, जैसे आपने सूरत हूद में पढ़ा था ना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में, के जो बेटे के बारे में कहा था कि मेरा बेटा है इसको क्यों नहीं बचाया अल्लाह ताला, नूह अलैहिस्सलाम ने, सालेह अलैहिस्सलाम ने, नूह अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर दे और अगर तूने माफ ना किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा ना। तो आप देखें कि यहाँ पे भी जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो ये बात कहते हैं, फस्तजाबा लहू रब्बहु, फिर इसके रब ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, फसरफा अनहु कैदहुन, और उन औरतों की चालें इसे दफा कर दी। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है ये बात पता चलती है कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, है ना, कि जब दुआएं इंसान करता है तो जाके आसमान के दरवाजों को चीरती हुई अर्शे इलाही तक पहुंचती हैं और अल्लाह उन दुआओं को कबूल करता है। गो कि दुआओं के पर कोई नहीं होते, है ना, दुआओं के पर नहीं होते लेकिन वो असर रखती हैं। तो अब यहाँ पर भी ये है कि दुआ अल्लाह ताला उनकी कबूल कर लेता है, इनको बुराई से बचा लेता है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया और उन औरतों की चालें इससे जो है वो हटा दी। तो चालों को हटाना, फसरफ अनहु कैदहुन से मुराद क्या है, अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी सीरत सवाले जो है वो बख्शी कि उनके मुकाबले में, उस सीरत के मुकाबले में सारी औरतों की तदबीरें नाकाम हो गई। मानी क्या है कि फिर मशीयत इलाही ने इनके लिए जेल का दरवाजा जो था वो खुलवा दिया, जेल का दरवाजा इनके लिए खुलवा दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जो है वो जानता है। और इससे हमें ये बात भी पता चलती है और अमल का उसूल हमारे सामने आता है कि जिंदगी में जो भी आजमाइशें आती हैं और जब बुराई खुल्लम खुल्ला दावत देती है या छुप कर दावत देती है तो अपने आप को बुराई से बचाना एक मोमिन की मताए जीस्त है। पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ साथ दुआएं भी मांगनी चाहिए। जैसे आप देखें कि अमेरिका, कनाडा या मगरिब के ममालिक में जो लोग आते हैं, शुरू शुरू में पहली दफा आप पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, आप मशरिक से यहाँ पर आए, तो आप एयरपोर्ट पर जब आते हैं और उतरते हैं तो लोगों को जब देखते हैं तो नजरें नीची हो जाती हैं, आप दाएं बाएं देखते हैं कि ये मैं सामने क्या देख रही हूँ, मुझे ये मर्द भी कहता है कि मुझे सामने क्या नजर आ रहा है ना, तो आप कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये नंगी औरतें और नंगे सीन और हर तरफ बुराई गंदगी और बाहर के मुख्तलिफ सीन जो है वो इतने परेशान करते हैं कि आप परेशान होते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ ना। लेकिन वक्त रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये जो दिल के अंदर एक बेचैनी, परेशानी, इस्तराब और ये आपका अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहना, फिर क्या है कि एक रूटीन लाइफ बन जाता है, फिर वो एहसास वो नहीं रहता जो कि होना चाहिए ना। तो ए दिले जिंदा के ही तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो असल बात क्या है कि मोमिन का एहसास जो है ना वो कभी मरता नहीं है, और ये वाला एहसास के कभी भी कहीं भी गुनाह बुराई जब उसको नजर आती है तो बचता भी है और साथ साथ दुआएं करता है। और अब यहाँ पे रहना और यहाँ पे जीना और फिर इन्हीं के रंग में ढल जाना और इन्हीं के रंग में रंगा जाना, जैसे कि मगरिब का रंग है या काफरों का रंग है, तो ये क्या है कि एक मुसलमान की जिंदगी का ये मकसद नहीं हो सकता, एक मुसलमान का जमीर इसको गवारा नहीं कर सकता। कितने ही साल क्यों ना हो जाए, पूरी जिंदगी बाहर क्यों ना जो है वो बसर हो जाए, निगाहों की हिफाजत करना, अपने दिल की हिफाजत करना ये बहुत जरूरी है। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या आपने एक मौके पर फरमाया था कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी इबादत में लज्जत पैदा कर दे तो उसको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए। गलत से बसर करना, निगाहों को पस्त करना, बुराइयों से बचना और सजदे करना, आहें भरना, सिसकियां लेना, हाथ फैलाना, दामन उठाना और अल्लाह ताला से कहना है अल्लाह तू मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को इस बुराई से, इस गंदगी के ढेर से मुझे बचा ले, बुला ले। और आप एक बात याद रखें कि आज फिर हर तरफ जो है वो जुलेखा है और आज फिर जो है वो यूसुफ जैसे ईमान की जरूरत है ना, जो आज भी हो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तो आज फिर जो है क्या है कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, बाहर हो के खिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। आज फिर अपनी जवानियों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ना बचाने की जरूरत है। आज मेरे और आपके बेटे, मेरी और आपकी बेटियां, हम खुद और हमारे शोहर, हमारे बहन भाई, ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी के अंदर रहकर जो है वो अपने ईमान को बचाना, उसकी हिफाजत करना, अपनी जवानियों को बेदाग रखना, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, कानों की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अपने आप से भी सवाल करती हूँ कि कोई है जो आज के इस दौर में यूसुफ बने, कोई है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जो है बेदाग जो है वो अपनी सीरत को रखे, अपने किरदार को रखे। और आप देख लें कि 10 पारे 12 पारे इस क्लास में भी पढ़ लिए और बहुत दिनों से हम लोग जो हैं वो बहुत सा जो है वो मताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका हाल कैसा है, अमल कैसा है। और मुझे ये बात बहुत अहम लगती है कि मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, कुरान की क्लास में जाना और सितारों का पढ़ते चले जाना, तकरीर करना, किताबें पढ़ना या किताबें लिखना, एक सवाल है जो मेरे और आपके नाम है, बहुत दिनों में रास्ता हरीम नाज का मिला, बहुत दिनों में रास्ता हरीम नाज का मिला, मगर हरीम नाज तक पहुंच गए तो क्या मिला। मेरे सफर की साथी हो तुम्ही से पूछती हूँ मैं, बताओ क्या सनम मिले, बताओ क्या खुदा मिला। मेरे सफर के साथी हो तुम्ही से पूछती हूँ मैं, बताओ क्या सनम मिले, बताओ क्या खुदा मिला। जवाब चाहिए मुझे जवाब ढूंढती हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढती हूँ मैं, कहाँ गए ऐसा किरदार, कहाँ गए वो लोग। जमीन की तहों में आफ्ताब ढूंढती हूँ मैं, दिलो नजर के मोतियों की आप ढूंढती हूँ मैं, वफा की दर्सगाहों का निसाब ढूंढती हूँ मैं, जवाब चाहिए मुझे जवाब ढूंढती हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई तो ख्वाब ढूंढती हूँ मैं। तो असल बात क्या है कि यहाँ के इस दौर में और यहाँ की सोसाइटी में रहते हुए आप इस बात पर गौर करें, मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, बरहंगी के शहर में लिबास की तलाश है, बरहंगी के शहर में लिबास की तलाश है, वो बर्फबारियां हुई के प्यास खुद ही बुझ गई, मैं सागरों को क्या करूं के प्यास की तलाश है, जो मरहलों में साथ थे वो मंजिलों पे छूट गए, जो रात में लुटे न थे वो दोपहर में लुट गए, मगन था मैं प्यार के बहुत से गीत गाऊंगा, जबान गुंग हो गई गले में गीत घुट गए, जिन्हें शहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढती हूँ मैं, वफा की दरसगाहों का निसाब ढूंढती हूँ मैं, जवाब चाहिए मुझे जवाब ढूंढती हूँ मैं, जिन्हें शहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढती हूँ मैं। और ये सूरत यूसुफ, और इसे कहानी के तौर पर पढ़ना सुनाना मुझे और आपको सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हम में से कोई है जो यूसुफ बने, कोई है जो यूसुफ जैसी सीरत और किरदार जो है तो अपनी बनाए और फिर अपने बच्चों की। और ये आज के इस दौर में बच्चों की निगाहें और अपनी निगाहें, अपनी निगाहों की हिफाजत बहुत जरूरी है। निगाह जो है ये पहला जो है ना वो रास्ता है कि जिससे निगाह के रास्ते गुनाह दिल में आता है, फिर दिल उससे सोचता है, फिर जबान खुलती है, फिर कान और हाथ और जिस्म सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल होने लगते हैं। और मुझे अपनी एक दोस्त की ये बात बड़ी अच्छी लगती है, एक दफा कहने लगी कि अब तो निगाहों में जो है ना वो हया नहीं है, और मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ना तो मैंने जल्दी उसकी शादी कर लेनी करनी है, मैं उसके बच्चे पाल लूंगी, वो पढ़ा लूंगी शादी के बाद भी उसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी के जरिए उसकी इज्जत की, निगाहों की जो है ना वो हिफाजत हो जाए। और निगाहों की हिफाजत करना और दिल की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत करना, और ये वो बात थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिसकी फिक्र की और अल्लाह से मांगा। और मेरा और आपका इस बात पर यकीन है, और यकीन क्यों ना हो कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआएं जो हैं वो कबूल करता हूँ। और जब बंदा दुआएं मांगता है मैं उसकी दुआएं सुनता हूँ और उसकी दुआएं जो हैं वो कबूल करता हूँ। मैं बंदे के, अपने मोमिन बंदे के बहुत करीब हूँ, है ना? आप ये बात पढ़ चुकी हैं तो यहाँ भी यही बात है कि असल यूसुफ अलैहिस्सलाम आप देखें कितने तन्हा थे, कितने मजलूम थे, कितने बेबस थे, ना बाप है ना माँ है ना भाई है ना कोई अपना है ना कोई दोस्त है, कोई भी तो नहीं है, ना दर है ना घर है ना शहर है, कैसी जो है वो बेबसी की एक तस्वीर है। लेकिन ये कि अल्लाह से उनका ताल्लुक था, और अल्लाह ताला से जिन लोगों का ताल्लुक होता है ना, अल्लाह ताला जरूर अपने बंदों की मदद करता है। फस्तजाबा लहू रब्बहू फसरफानहू कैदुहुन इन्नहु वस्समीउल अलीम, इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और उनकी औरतों की चालें इसे दफा कर दी। और अल्लाह चालों को दफा क्यों ना करता, शैतान की चालें, गुनाहों की दावत, गुनाहों के जाल, ये बड़े ही कमजोर होते हैं, बड़े ही बेजरर होते हैं। कब? ईमान की चोट उनको पाश पाश कर देती है। और ईमान की चोट तो ऐसी होती है कि फातिमा बिन खिताब ने जब ईमान था तो जब वो उमर जैसे पहाड़ से टकराई तो वो भी पाश पाश हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर सुनूं तो सही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दावत पेश करते हैं। और बेशक वो जो है वो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है, कौन? अल्लाह ताला। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी, फिर जो है क्या हुआ, जाहिर हुआ उन लोगों को मिन बादी इसके बाद मा रावुल आयाती के जो वो सरी निशानियां देख चुके थे, लयस जो नहु हत्ता हीन के यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि फिर उनको यूं समझ में आया, उन लोगों को यूं समझ में आया, लहुम उन लोगों को मिन बादी बाद इसके कि मा रावुल आयाती इन निशानियों के देखने पर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो जो सबने कोशिशें की इसके बावजूद उनका ये अमल और उनका इतना पुख्ता किरदार, ये सारी निशानियां देखने के बाद उन लोगों को क्या समझ में आया कि लयुस जुनन्नहु के जरूर ब जरूर इसको कैद में रखा जाए, हत्ता हीन एक मुद्दत तक। तो अब जो है वो क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में डाला जाना दरअसल ये अजीज मिस्र की बीवी की और वो जो बाकी ओहदेदारों और अफसरों की बीवियां थी ना, ये उनकी दरअसल इखलाकी फतह थी। वो क्या समझ रहे थे कि हम जीत गए हैं और यूसुफ हार गए हैं क्योंकि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और अब जो है अब इसको जेल में जाना ही पड़ेगा, अब इसे जरूर कैद में डालना ही पड़ेगा, ये ऐसे सीधे सीधे बुराई जो है इसको कबूल करने वाले नहीं है। और अब आप देखें कि ये सारा जो वाकया पेश आया कि दरवाजों का बंद किया जाना और फिर शहर में बात का गश्त करना, फिर वो औरतों का छुरी से अपने हाथों को काटना, अब इससे क्या बात हुई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुमनाम ना रहे, अब पूरे मिस्र में उनकी जो है वो शोहरत हो गई اور دارو سلطنت کے عام اور خاص سارے لوگ ان سے واقف ہو گئے، ان کی دل فریب شخصیت، ان کا کردار، ان کا حسن، ان کی سیرت، ان کا جو ہے وہ سراپائے جو ہے وہ صدق و وفا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں جو ہے عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں نے اس میں خیریت اپنی سمجھی کہ یہ تو ماننے والا نہیں ہے، تو بس اب ہماری خیریت اسی میں ہے کہ اس کو جو ہے وہ جیل خانے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے، کیونکہ گھر گھر چرچا اور سب کو یہ بات پتا چل رہی تھی کہ کتنے مضبوط کردار کا ہے، کیسی اس کی جو ہے وہ بلند اس کی شخصیت ہے، کیسا پاکیزہ اخلاق ہے اس انسان کا، ہے نا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں بھیجا جا رہا تھا، ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑی اہم بات ہے، قصور ان کا نہیں تھا، جرم ان کا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا سین جیم نون جو ہے جیل میں کسی کو بھیجا جانا، اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد، تحقیق اور تفتیش سے جب جرم ثابت ہو جائے تو کسی کو جیل میں بھیجا جانا، لیکن ابھی جرم تو ثابت ہی نہیں ہوا، جرم کسی کا ہے اور مجرم کسی کو ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کو تو جیل میں ہی بھیجنا پڑے گا، اور کیوں جیل میں بھیجنا ضروری، انہوں نے سمجھا یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے، ثم بدا لہم، ان سب وہ جو عورتوں کے شوہر تھے، وہ جو مصر کے عہدے دار تھے، جو ذمہ دار تھے، جب گھر گھر چرچا اس بات کا ہونے لگا تو انہوں نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ اپنی عورتوں کو تو ہم قابو میں رکھ نہیں پا رہے، اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کی بجائے انہوں نے سمجھا کہ اس بے گناہ شخص کو جیل میں بھیج دیا جائے، یہی زیادہ جو ہے وہ آسان ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی شخص کو بغیر انصاف کی شرائط کے، بغیر کسی پہ جرم کو ثابت کیے کسی کو جیل میں ڈال دینا، یوں ہی پکڑ کر جیل میں ڈالنا، یہ بے ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے، یہ ان کا پرانا طرز عمل ہے، یعنی آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی شیاطین کا یہی طرز عمل تھا، آج بھی جمہوریت کا جو لوگ نام لیتے ہیں اور جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو کیا کرتے ہیں، جیل میں بھیج دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی جو ہے وہ اس کی کسی گناہ کے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دے، حالانکہ وہ سارے وہ لوگ ہم جو تھے نا، دنیا یہ بات دیکھ چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک دامن ہیں اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کا برا کردار ہے، برے اتوار ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ مدت کے لیے اس بات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی جو خود پڑھنا اور دوسروں کو سنانا، خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، اور انبیاء کرام کا جو کردار ہے یہ ایک رول ماڈل ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل فلمی ایکٹر نہیں ہے، کھلاڑی نہیں ہے، اور یہ ماڈل گرلز جو ہوتی ہیں ماڈلنگ کرنے والی وہ نہیں ہے، سوسائٹی میں دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کردار ہے جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہے، حیا کی زیادتی خیر لاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا پورا کردار کتنا بے داغ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین ہے، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کا تعلق جو ہے نا اللہ سے بہت ہی قریبی اور بہت ہی مضبوط تعلق ہو، اور میں اور آپ جب گناہ، ہر طرف گناہوں کی کھلی دعوت ہے اور اس کا انکار کریں گے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، تو پھر کیا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ جب وہ وقت اتنا مشکل وقت ہوگا کہ پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، کہ اللہ سلامتی کر، اے اللہ آسانی کر، ہے نا؟ ہر شخص اپنے اپنے عملوں کے مطابق پسینہ پسینہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔